नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों में आज भी केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा जारी रहेगी। इससे पहले कल राज्यसभा में चर्चा में भाग लेते हुए शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल के दौर में भारत व्यापक आर्थिक वृद्धि और स्थिरता का एक दुर्लभ उदाहरण बनकर उभरा है। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव बीधा ने कहा कि बजट व्यापक आर्थिक स्थिरता, बुनियादी ढांचे के विकास, तकनीकी परिवर्तन और सामाजिक समावेशन का समन्वित रूप है। एनसीपी एससीपी की फौजिया खान ने बजट में बच्चों से संबंधित व्यय में कमी पर चिंता व्यक्त की। वहीं लोकसभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वर्ष के बजट में बेरोजगारी, बढ़ती जीवन यापन लागत और असमानता जैसे मुद्दों की अनदेखी की गई है। भाजपा की अपराजिता सारंगी ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए सरकार की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी कारोबारियों ने भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते का स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद के उपाध्यक्ष राजेश एम रेवनकर ने कहा कि यह समझौता इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए व्यापक अवसर सृजित करेगा। उन्होंने कहा कि शुल्क में कमी से कई व्यावसायिक क्षेत्रों को लाभ होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी के संकट से देश को बचाना सभी सरकारी विभागों का कर्तव्य है।
गृह मंत्रालय स्वतंत्र रूप से I4C, राज्य की पुलिस, CBI, NIA, ED, दूरसंचार विभाग, बैंकिंग सचिवालय, IT मिनिस्ट्री, RBI और न्यायपालिका, ये सभी साइबर अपराध को कम करने के लिए और रोकने के लिए संभवतः सभी प्रयास कर रहे हैं।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 17 फरवरी से 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत आएंगे। वे 19 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हराइजन 2047 रोडमैप में निर्धारित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बांग्लादेश में 13वीं राष्ट्रीय संसद के चुनाव के लिए कल मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
अल्पसंख्यक नेताओं और इस्लामी विद्वानों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रति समर्थन का संकेत दिया है। यह समर्थन ऐसे समय में सामने आया है जब हिंसा और चुनावी माहौल को लेकर चिंता बढ़ रही है। इस बीच कई इस्लामी समूहों के नेताओं ने मतदाताओं से BNP के चुनाव चिन्ह धान की बालिया के पक्ष में वोट देने की अपील की। मतदान 12 फरवरी को सुबह 7:30 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक होगा। हालांकि प्रतिद्वंदी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों और मतदाता डराने के आरोपों ने चुनाव के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष होने को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दूरदर्शी विचारक और राष्ट्र निर्माता बताया, जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 122 अंक की वृद्धि के साथ 84,396 और निफ्टी 50 अंक की वृद्धि के साथ 25,985 पर था। ICC T20 विश्व कप ग्रुप डी के मैच में अहमदाबाद में अफगानिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के साथ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। वहीं ग्रुप बी में कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड के साथ खेलेगा। ग्रुप सी में मुंबई में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज आमने सामने होंगे। FIH प्रो लीग पुरुष हॉकी में पूर्व विश्व और ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम ने कल राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में अर्जेंटीना को 5-3 से हराया। इस जीत के साथ बेल्जियम ने प्रो लीग तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। वहीं अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मेजबान भारत से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।